इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य, यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु कभी पक्षी कभी कीड़े कभी जल जंतु कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहां पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करा जाएगा त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करे। आप पहले तो आगे आ जाइए सब लोग, जब भी बैठें तो आगे से बैठें, अच्छा है जिससे कि पीछे आने वाले पीछे। बच्चे लोग तो पीछे बैठ जाओ, पीछे लास्ट, जब जाना हो तो वहीं से निकल जाना। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण और रोचक है। पुनर्जन्म, क्या मृत्यु के उपरांत फिर से जीवन होता है? अगर होता है तो क्या हमें फिर से मनुष्य योनि ही मिलती है या अन्य योनियां, पशु, या हम पशु ही बन सकते हैं? और यदि ऐसा है तो फिर किस बात पर निर्भर करेगा कि किसको पशु योनि मिले और किसको मनुष्य योनि मिले? और फिर क्या चिरकाल तक ऐसे ही हम योनि परिवर्तन ही करते रहेंगे या इसका कोई अंत भी आएगा? और यदि अंत आएगा तो फिर उस अंत में क्या होगा? अंत के समय में हमें कौन सी योनि में रहना होगा, कहाँ होगा? तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग इनके ऊपर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक की व्याख्या के आधार पर करने का प्रयास करेंगे। तो जब मैं छोटा था तो ये प्रश्न मेरे को बहुत सताता था। मैं नहीं जानता आप में से कितने स्टूडेंट्स को ये भी प्रश्न आता होगा कि सुना था माता पिता और सबसे कि ऐसी योनियां बदलते हैं, तो फिर ये प्रश्न मेरे को बहुत परेशान करता था कि योनि बदलते हैं लेकिन कब तक बदलेंगे? कहीं फुल स्टॉप लगेगा कि नहीं लगेगा? या ऐसे ही घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे, तो फिर क्या पर मतलब क्या रह गया फिर ऐसे घूमते जाने का, यदि विदाउट एनी एंड, कोई अंत नहीं होने वाला, ऐसे ही घूमते आना। तो वो प्रश्न इतना ज्यादा गंभीर था कि मैं ऐसा अनुभव करता था कि यदि जब तक ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मेरा जीना का मतलब क्या है और क्यों जी आगे, जब तक इस प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए कि आखिर ये सब यूनिया में घूमते रहने के बाद फाइनली क्या होगा। तो ऐसे और इससे संबंधित प्रश्न उठते हैं मनुष्यों के दिमाग में, कुछ मनुष्यों के दिमाग में, सबके दिमाग में नहीं उठते हैं, कुछ के दिमाग में उठते हैं। हम लोग अपने को हीरो समझते हैं, कैसे मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, जो मैं हूं अपनी वजह से हूं, मैं अपने बल बुद्धि कर्म की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, और कोई भी चीज संसार में ऐसी नहीं है जो मेरे लिए असंभव है। तो ऐसे सब विचार भी हमारे दिमाग में रहते हैं, और विशेष रूप से आजकल के आधुनिक समाज में तो ऐसे विचारों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आप कभी किसी मार्केटिंग क्लास में जाएंगे तो आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, घबराओ मत, सब कुछ कर सकते हो, आप बिल गेट्स बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते। तो आपके मन के अंदर पूरा एकदम से उत्साह आता है, अरे वाह मैं बिल गेट्स बन सकता हूँ, ओके। तो यही जीवन का टारगेट, जितना ऊंचा रखो। तो इस श्लोक में भगवान इस मेंटेलिटी विचारधारा को व्यक्त करते हैं, हमारी पुरुषः, पुरुष शब्द से, पुरुष शब्द का वास्तविक जो अर्थ है वो है एंजॉयर, भोक्ता, जो एंजॉय करना चाहता है, एंजॉय करने के लिए एंडेवर करता है, प्रयास करता है, उसे कहते हैं पुरुषः। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, इस भौतिक जगत को प्रकृति कहते हैं, भौतिक प्रकृति। पुरुषः यानी एंजॉयर, ये हम सबके लिए प्रयोग में हुआ है पुरुषः शब्द। तो ऐसा नहीं कि केवल ये पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, तो स्त्रियां इस श्लोक में नहीं आती, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पुरुषः का मूल अर्थ लिया गया है जिसका अर्थ है एंजॉयर। तो इस भौतिक जगत में चाहे कोई पुरुष शरीर में है, चाहे कोई स्त्री शरीर में है, चाहे कोई बच्चे के शरीर में है, चाहे कोई गधे के शरीर में, चाहे घोड़े के शरीर में है, कोई भी है, लेकिन वो अपने क्या समझ रहा है, एंजॉयर समझ रहा है, भोक्ता। इसलिए भगवद गीता विशेष रूप से मनुष्यों के लिए है, तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, विश कम से कम पुरुष। तो हम यहां पर सब भोग करने की वृत्ति से यहां पर आए हैं, वास्तव में भोक्ता, वास्तव में पुरुष एंजॉयर, रियल एंजॉयर, अल्टीमेट एंजॉयर है श्री कृष्ण भगवान, वो वास्तविक एंजॉयर है। और हम वर्तमान स्थिति में इमिटेशन एंजॉयर है, नकली भगवान है। तो आप में से कौन नहीं है जो जीवन में कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना चाहते, कुछ बड़ा आदमी, कुछ बड़ा पैसा, कुछ बड़ा हर चीज, बड़ा बड़ा बड़ा, बिग बिग, थिंक बिग, नाराज का थिंक बिग, बड़ा सोचो, कुछ करके दिखाओ। हमारे माँ बाप भी हमको प्रेरित करते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बड़ा, कुछ नाम करो, कुछ परिवार का नाम करो। तो ये सब वृत्ति, क्योंकि एंजॉय करने के लिए बड़ा होना जरूरी है, करेक्ट। एंजॉय करने के लिए शुड बी ऑन ए बिग पोजिशन, जिससे कि आप सबकी सेवा ले सको। समाज में जब भी कोई बड़ा होता है तो वो छोटे लोग उसकी सेवा करते हैं, तो इसलिए जब आप सबसे बड़े हो जाएंगे तो आपके सब सेवा करेंगे, तो आपका सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट होगा। इसलिए पुरुष होने की इच्छा के अंदर निहित है, यानी एंजॉयर होने की इच्छा के अंदर निहित है बड़े होने की इच्छा, बिग। तो क्या आप एनालाइज करके देखिए, क्या हमारे पूरे सेटअप में, सोसाइटी में क्या इस चीज को एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा है? हर देश एक दूसरे देश से आगे बढ़ने की प्रयास में है, हम किसी से कम नहीं। भारत एक दिन पूरे विश्व का अग्रणी देश होने वाला है, डेवलप्ड कंट्री होने जा रहा है, डेवलपिंग से डेवलप्ड होने जा रहा है, और फिर डेवलप्ड नेशन प्राउड से, वी आर डेवलप्ड, हम आगे हैं। तो देश के स्तर पर देख लीजिए, तो कोई एक देश के अंदर, एक समुदाय के अंदर देख लीजिए, हम लोग पटेल हैं, पटेल, वी आर पटेल, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं हम, सबसे ज्यादा धनी हैं। तो फिर अड़ोसी पड़ोसी, हमारे पास कार है, हमारे पास इतना बड़ा घर है, हमारा बच्चा इंजीनियर है, आपके क्लास में देख लीजिए, सब एक दूसरे से कंपटीशन करने चलते हैं, जिसकी मेमोरी ज्यादा है, किसको नॉलेज ज्यादा है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा स्मार्ट है। सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कम्पीट एक दूसरे से, की आगे निकलने की होड़, करेक्ट। किस लिए? क्योंकि हम क्या चाह, क्या सोच रहे हैं अपने को, एंजॉयर पुरुषः। तो इसलिए आप सभी लोग मुझसे सहमत हैं जब मैं ये कह रहा हूं, ये श्लोक में यहां पर हमारे बारे में जिक्र चल रहा है, पुरुषः प्रकृति स्थो ही, हम सब उसी कैटेगरी में, ऐसा मत समझिए ये किसी और के बारे में बात हो रही, नहीं, हम सबके बारे में बात हो रही, क्योंकि हम सभी एंजॉयर अपने को सोच रहे हैं, इसीलिए इस भौतिक जगत में सब कुछ, सब सब लोग इसीलिए हैं, टू एंजॉय, एम ऑफ लाइफ इज टू एंजॉय। तो पुरुषः उसके बारे में बात चल रही, लेकिन पुरुषः वो इस समय क्या है, प्रकृति स्थो ही। हम सब जो पुरुष हैं वो कहां पर स्थित हैं, प्रकृति में स्थित हैं, आप एक शरीर में स्थित हैं, आप इस शरीर से अलग हैं, आप मन से भी अलग हैं, आप बुद्धि से भी अलग हैं। इस बात को हमने पिछली कक्षा में भी समझा था अर्पण के उदाहरण से, करेक्ट, याद है ना, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। कौन जानते हैं श्लोक का अर्थ? देवांग, यू रिमेंबर? ओके, तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को बताए हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हमारा हनन नहीं होता है, हमारा मरण नहीं होता है जब इस शरीर का हनन हो जाता है। जब कोई आदमी मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, चल बसा, गुजराती में क्या बोलते हैं, मरी गयो, गुजरी गयो, गुजर, पास्ट अवे, यस, पास्ट अवे, चला गया, तो वो शरीर वही है लेकिन कुछ चला गया। तो कुछ वैज्ञानिक ऐसा मत प्रस्तुत करते हैं कि अभी वास्तव में वो कुछ चला नहीं गया, वही शरीर पहले जीवंत था, क्योंकि उसके अंदर जीवन प्रकट करने वाले सभी रसायन उपस्थित थे, सभी स्थितियां उपस्थित थी, जिसकी वजह से वो जीवंत प्रतीत हो रहा था। लेकिन अभी बीमारी की वजह से या किसी कारणों से उसके अंदर अभी ऐसे तत्व तो नहीं है जिससे कि जीवन संभव हो, टिक सके, इसलिए अभी वो मृत लग रहा है या हो गया है। ऐसे तर्क सुना है आपने? अपनी पुस्तक में सुना है, पढ़ा है, लिखा है, एग्जाम दिया है, पास हुए हैं, लास्ट टाइम भी टेस्ट करेक्ट तो नई बात नहीं है, भले ही आप उसको माइंड में ना संभाल के रखे हों। तो आप देखे होंगे जब कोई किसी का कोई मृत शरीर पड़ा है, मान लीजिए कुत्ते का, तो आप देखे हैं कुछ ही घंटों के अंदर उसके अंदर से कितनी दुर्गंध आती है। उस दुर्गंध का कारण क्या है, वो डिकम्पोज होने लगती है, बॉडी सड़ने लगती है और उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं उस शरीर के अंदर, देखें आप। तो यानी उस शरीर के ऊपर आधारित बहुत सारे जीवन है जो चल रहा है। इसका मतलब उस शरीर में जीवन को संभालने के लिए चीजें तो हैं, बहुत सारे जीवन अभी भी, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया उसके अंदर अभी भी हैं जो जी रहे हैं, पहले भी थे। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, मरने के बाद एक आत्मा निकल के जाती है, एक जो मेन है वो चली जाती है, लेकिन उसके अंदर अन्य जो आत्मा वो तो रहती है, अनेक अनेक बैक्टीरिया फिर भी रहते हैं ऐसे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर वो चीज खत्म हो गई जिसकी वजह से जीवन टिका हुआ था भौतिक दृष्टि से, ऐसा नहीं है, नहीं तो कोई भी जीवन संभव नहीं होना चाहिए था, तो वो कारण हम नहीं मान सकते हैं और उसका कोई सबूत भी नहीं है उनके पास, ये केवल उनकी धारणा है। यदि ऐसा है आप उसको प्रूफ तब कह सकते हैं तो ठीक है, ऐसी वो स्थिति जो आप सोचते हैं कि भौतिक ये स्थिति ये रसायन की वजह से वो जीवन अभी वो मृत हो गया है, तो वो रसायन आप डाल दो और उसको जीवित करके दिखा दो मृत शरीर को, तो हम मान लेंगे, लेकिन ऐसा तो कहीं संभव हो ही नहीं पाया है। तो इसलिए मात्र ये कह देना कि अच्छा इसके अंदर कोई रसायन है जो निकल गया है जिसकी वजह से, वो कम से कम वैज्ञानिक नहीं है, जो विज्ञान वो लोग मानते हैं हर चीज एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो वो विज्ञान के अंतर्गत वो तथ्य नहीं है। तो जैसे कि हम पहले भी विचार कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि हर चीज मात्र हमारी इंद्रियों के द्वारा समझी नहीं जा सकती है, दृष्टिगोचर नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी सीमितताएं हैं, क्षमता सीमित क्षमताएं हैं। इसीलिए वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका है जो जानकार है उनसे सुने। तो भगवान श्री कृष्ण, ये हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस प्रकार से शास्त्र भगवान की वाणी है और हम उनसे सुनने से इन सब विषयों के ऊपर आसानी से उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, जो बड़ा ही तर्कसंगत है सब तरीके से। और आप यदि आधुनिक विज्ञान से इनकी परख भी करेंगे तो सत्य ही निकलेंगे, जैसे निकल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे एक उदाहरण लें, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते होंगे साइंस की, कितनी बार ये शब्द आता है, मे बी हो सकता है, मे बी इट इज लाइक दिस, मे बी। मेडिकल बुक में आप पढ़ेंगे हर थ्योरी के लास्ट में सेंटेंस है, एंड एग्जैक्टली हाउ दिस हैपेंस वी डोंट नो, द लास्ट कंक्लूजन हाउ इट हैपेंस दैट वी डोंट नो, मे बी मे बी मे बी मे बी मीन्स इट इज नॉट साइंस। अगर मे बी आप कह रहे हैं शायद ऐसा, तो फिर साइंस क्या रहेगी, वो ये तो केवल एक अनुमान हो गया मे बी। लेकिन आप शास्त्र में कभी ये वाक्य नहीं देखेंगे मे बी, भगवान कृष्ण कभी नहीं बोले एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, जलजा नवलखानी, जल में 900,000 प्रकार के जीव हैं। भगवान ने ऐसा नहीं कहा जल में शायद 900,000 प्रकार के जीव हैं, जल में 900,000 प्रकार के जीव हैं, इतने प्रकार के पक्षी हैं, इतने प्रकार के मनुष्य हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसे कहते हैं ज्ञान। तो जो जानता है वो ऐसे बोल सकता है कॉन्फिडेंस का, इतना है। इसलिए शास्त्र में हर जगह हर वचन में वहां कहीं मे बी ये सब आएगा नहीं शब्द, नो मे बी, इट इज फैक्ट एंड इट रिमेन्स फैक्ट ऑलवेज। साइंटिस्ट लोग देख रहे हैं सब सही है धीरे धीरे, वो हमेशा से ऐसे ही लिखा है वहां पर, कोई वहां ऐसा नहीं कोई प्रोग्रेशन और डिस्कवरी हो रही है कि पहले मे बी था अभी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग मे बी है, ऐसा नहीं होता है, हमेशा से फ्रॉम बिगिनिंग इट इज लाइक दिस एंड इट विल रिमेन लाइक दिस। जलजा नवलखानी मीन्स इट विल रिमेन जलजा नवलखानी, भूगोल मीन्स भूगोल, पहले से ही भूगोल ही और गोली रहेगी, शास्त्र में नहीं कहा गया कि ओहो गलती हो गया, पहले हम सोच रहे थे फ्लैट है लेकिन अभी पता लगा गोल है, दोनों को नोबेल प्राइज नहीं, कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं मिलेगा। वो शुरू से ही भूगोल लिख ही लिखा है। ये कहते हैं शास्त्र, इसे कहते हैं परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि इसका आधार है, स्रोत है परफेक्ट पर्सन। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सरलता समझाए हैं कि कैसे हम समझें कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। हमने ये लास्ट टाइम भी उदाहरण दिया, दोबारा से रिपीट करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसी जीवन में भी तो शरीर परिवर्तन कर रहे हैं, हम शरीर परिवर्तन कर रहे हैं यानी कि हम शरीर से अलग हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने घर परिवर्तन किए हैं? काफी लोग हैं। तो जब आप घर परिवर्तन करेंगे तो मतलब आप घर से अलग हैं, तभी तो घर परिवर्तन करेंगे। करें एक घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं तो आप वही रहते हैं, अभी घर बदल गया, घर परिवर्तन हो गया। तो ऐसे ही इसी जीवन के अंदर तो आप कितने शरीर बदल रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। आप पहले एक बचपन छोटे से शरीर में थे, फिर बड़े शरीर में, अभी युवा के शरीर में है, फिर बूढ़े के शरीर में भी आना पड़ेगा। आप रोक सकते हैं? हमारे हाथ में है। क्या हाथ में है? दांत गिर जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, कुछ हाथ में नहीं है, कुछ नहीं रोक सकते आप, बूढ़ा होना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है स्ट्रांग, लेकिन बदलना पड़ेगा शरीर हमको, हमारा शरीर बदलेगा यानी कि। और हम इस बीच पूरे अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हम वही व्यक्ति हैं जो 20 साल का मैं हो गया हूं। सबसे पहले कितनी उम्र हो गई आपकी? 20 साल की होगी। यदि आप हर दिन बदल रहे हो तो फिर 20 साल की उम्र किसकी? फिर तो आपको बोलना चाहिए मैं अभी अभी आई डोंट नो पहले क्या अभी हूं मैं। नहीं, आप सब जानते हैं मैं 20 साल का हूं, 25 साल का हूं। आप अनुभव करते हैं मैं वही व्यक्ति हूं। आपके माता पिता अनुभव करते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं, आपके रिलेटिव अनुभव करते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं, लेकिन सब अनुभव करते हैं कि आपका शरीर बदल रहा है। और मेडिसिन के अनुसार भी 7 साल के अंदर सभी अणु बदल जाते हैं शरीर के मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हम शरीर परिवर्तन कर रहे हैं यानी कि हम शरीर नहीं हैं। और इसको बड़ी सरल भाषा में भगवान ने समझा दिया है, जिसके ऊपर साइंटिस्ट 200 साल की खोज के बाद भी आज भी डाउटफुल हैं, उसे एक श्लोक के अंदर भगवान ने स्पष्ट कर दिया। ये बेनिफिट है शास्त्र समझने का। तो ऑप्शन आपके पास है, 200 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी डाउटफुल रहो, या भगवान की बात में विश्वास करके एक सेकंड के अंदर बात को समझ जाओ। ये चॉइस आपके हाथ में है। आप जानते हैं FAO, फूड अथॉरिटी, व्हाट इज फुल फॉर्म? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी समथिंग, आई डोंट नो, ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी खाद्य पदार्थ के ऊपर FAO या ISI, तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेने जा रहे हैं तो उसके ऊपर आप देखते हैं कि ISI या कहीं से प्रमाणित है ISO 9000, तो अगर वो होती है तो आपके हृदय के अंदर एकदम से श्रद्धा हो जाती है, ये तो पक्की चीज है भाई, इसको ले लो, कंपनी गॉडरेज या ISI मार्क है ना, या फूड कोई खाने की चीज लेने गए और उसके ऊपर FAO की मोहर है, यानी कि ये सिक्का लगा है, इसका मतलब ये अधिकृत। तो ऐसा नहीं कि आप हर चीज को पहले लेबोरेटरी आते हैं, चेक करते हैं इसमें कहीं पॉइजन तो नहीं है, इसमें सब खाने योग्य केमिकल्स हैं, तो फिर तो खाने के टाइम तक तो सब खत्म हो जाएगा। तो अगर आप अथॉरिटीज को फॉलो करते हैं तो आपका रास्ता बड़ा सरल हो जाता है। जैसे मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है। अभी ये स्टेटमेंट को समझना है तो एक तरफ तो हमारे पास तरीका है कि आप स्टडी शुरू करें, ऑब्जर्वेशन शुरू करें, अपने आसपास के सब लोगों को उनका एक नोटबुक बना लें, मिस्टर सो एंड सो पटेल बॉर्न इन दिस, एवरी डे यू मॉर्निंग यू गो टू हिज हाउस, यू आर अलाइव, ओके इज अलाइव, नेक्स्ट मैन यू आर ऑल्सो अलाइव, ओके, ऐसे सबको रिकॉर्ड करते रहें। और फिर वो जब मरेगा, ओ टुडे ही डाइड, नेक्स्ट पर्सन टुडे ही डाइड, ऐसे एक एक का स्टडी करते रहें तो आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, आप भी खुद मर जाएंगे। मरने से पहले तक भी क्या आप कभी इस कंक्लूजन पर निकल आ पाएंगे कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है? मान लीजिए आपने 1000 लोगों को स्टडी किया और वो सब के सब मर गए, लेकिन हो सकता है कोई एक हो जो नहीं मरता हो, करेक्ट? कोई पक्का तो नहीं हुआ, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से समझेंगे मैन इज मोटर, हर एक मरता है, फिनिश, आसान हो जाएगा काम। माता पिता से आप सुनते हैं, बेटे ये आग है, इसको जलाने से जल जाते हैं। यस यू हैव फेथ, माय फादर इज टोल्ड मी, मेरे पिता कह रहे हैं तो सच ही होगा, दैट्स ऑल, और वो सच है और फिनिश। और पिताजी नहीं है, हर चीज का एक्सपेरिमेंट करके देखने आए तो पहले अपने हाथ को जलाओ, फिर पता लगेगा कि अग्नि जलाती है। पानी में डूब जाओगे, पानी में मत जाओ, नहीं मैं तो एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, तो कितना बेनिफिट है तुरंत आप जान लेते। और विशेष रूप से ऐसी चीजें जो आपके एक्सपीरियंस में कभी आ ही नहीं सकती हैं, उन चीजों के लिए तो और कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए हमको परफेक्ट सोर्स शास्त्रों से, वेदों से, जो परफेक्ट है क्योंकि परफेक्ट पर्सन से आए हैं, लेना चाहिए। और उसमें जो बातें दी गई वो इलॉजिकल नहीं है, पुट योर रीजनिंग, अपनी रीजनिंग लगा के देखो, इसमें सब चीज रीजनेबल है, तर्कसंगत है। और एक्सपेरिमेंट भी करके देखो, जहां तक एक्सपेरिमेंट की क्षमता है वहां तक, एक्सपेरिमेंट की लिमिट है आपकी, इसलिए जहां तक लिमिट है वहां तक देखो, सही होगा। जैसे गाय का गोबर शुद्ध है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो डॉक्टर बोस, एक कलकत्ता के साइंटिस्ट हुए, बोस लेबोरेटरी जिन्होंने शुरू की, तो उन्होंने पता लगाया कि यस, गाय के गोबर सब प्रकार के एंटीसेप्टिक क्वालिटीज है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्लांट्स में भी जीवन होता है, सब में जीवन, पौधों में जीवन है। तो जगदीश चंद्र बोस ने फिर उसको प्रूव करके दिखाया, करेक्ट? तो ऐसे अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंटल तरीके से उसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको प्रूव या डिसप्रूव करने के आपके पास अभी इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, डिसप्रूव करने की भी नहीं है, प्रूव करने के नहीं है, तो इसलिए केवल आप प्रूव नहीं कर सकते तो आप नहीं बोलते सो डिसप्रूव्ड, नो, यू डोंट हैव इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रूव और डिसप्रूव। तो फिर ऑप्शन क्या है, बैठे रहो 100 साल बाद जब कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट ईजाद होगा तब जाके प्रूव करेंगे। दूसरा तरीका है शास्त्र से सुन करके, समझ करके, श्रद्धा से विश्वास करो, अपने जीवन अपनाओ एंड टेक द फ्रूट्स। तो उस आधार पर हम लोग यहां पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जो कॉमन सेंस की बात है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस के बारे में कहा जाता है, कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। तो कॉमन सेंस जो है वो बहुत कॉमन नहीं है, जनरली पीपल आर नॉट एक्टिंग विथ कॉमन सेंस। उदाहरण, जो जितना ज्यादा जो ज्यादा ये एजुकेशन में पढ़ा होगा उसको ये फैक्ट समझने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। एक बच्चे को समझाना आसान है, लेकिन एक एजुकेशन सेटअप में पढ़ा हुआ व्यक्ति को समझाना मुश्किल है, लेकिन एक वास्तव में इंटेलिजेंट एजुकेटेड पर्सन को समझाना आसान है, वो खुद समझ आता है। जो वास्तव में एजुकेटेड है, तो रियली इंटेलिजेंट है, लीडिंग साइंटिस्ट, जो वास्तव में साइंटिस्ट हैं, वो लोग समझते हैं, यस देयर मस्ट बी गॉड। एक बुक है, उसमें पूरा सर्वे किया गया, लीडिंग साइंटिस्ट सबसे अलग अलग प्रश्न पूछे गए। तो एक प्रश्न था कि हाउ डू यू रिलेट साइंस विद रिलीजन, साइंस विद स्पिरिचुअलिटी, साइंस और स्पिरिचुअलिज्म को क्या आप दोनों के बीच में संबंध को देखते हैं? तो साइंटिस्ट लोग, जो लीडिंग साइंटिस्ट, वेरी बिग साइंटिस्ट, वो बोले ये दोनों अलग अलग विषय हैं। साइंस इज डीलिंग विद समथिंग ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअलिज्म इज डीलिंग विद समथिंग विच इज बियॉन्ड दिस मेटेरियल वर्ल्ड। दे आर एक्सेप्टिंग इट, मैनी ऑफ देम, ज्यादातर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो थोड़ा ज्ञान रखता है, हिंदी में एक कहावत है, अदकल गगरी छलकत जाए, जिसके पास ज्ञान थोड़ा होता है वो छलकता ज्यादा है, आवाज ज्यादा करता है। जिसके पास वास्तव में ज्ञान होता है वो गंभीर होता है, वो तथ्य को जानता है। तो ये छोटे छोटे से वैज्ञानिक हैं, ये छोटे छोटे जैसे हम में से कई लोग जो थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ ली, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ ली, प्रूव मी गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, अरे भाई तुम क्या छोटे से मच्छर हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, जो वास्तव में जानकार है वो ऐसी बकवास कभी नहीं करेंगे। लाइक न्यूटन, आइंस्टाइन, वो जानते हैं क्या है, हम क्या हैं। जो ज़्यादा वास्तव में जो आगे चलते हैं ज्ञान में, वो जानते हैं कि हम कितने छोटे हैं, और जो छोटे होते हैं वो सोचते हैं बहुत बड़े हैं। ये नॉर्मल फेनोमिनन है। जो वास्तव में बड़े हैं वो जानते हैं कि हम क्या बड़े हैं, आइंस्टाइन है या न्यूटन है, कुछ नहीं है हम लोग। तो ये तथ्य समझना बहुत जरूरी है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, हम शरीर परिवर्तन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, तो फिर हम इस शरीर के बाद कहां जाने वाले हैं? तो पुरुषः प्रकृतिस्तु हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जान गुणान। तो हम जो है इस भौतिक जगत में एंजॉय करने के लिए आए हैं, जैसा हमने पहले बताया, आनंद लेने के लिए आए हैं। वास्तव में हमारी स्थिति है इंडिपेंडेंट एंजॉयर की नहीं, स्वतंत्र भोक्ता की नहीं, बल्कि भगवान के सेवक होने की हमारी स्थिति है स्वाभाविक। और अपनी उस स्वाभाविक स्थिति में रहने से स्वाभाविक रूप से हम आनंदित रहते हैं, परम आनंदित रहते हैं। लेकिन जब हम इसके विपरीत इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान की सेवा ना करके स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, स्वयं भोक्ता बनना चाहते हैं, तब हम प्रकृतिस्थ इस भौतिक जगत में आते हैं, इस शरीर में आते हैं, एक शरीर धारण करते हैं। आत्मा को शरीर तब धारण करना पड़ता है, हम सबको शरीर तब धारण करना पड़ा है जब हमने भगवान की सेवा से विद्रोह किया है। विद्रोह, हम नहीं करेंगे सेवा, हम खुद भगवान बनना चाहते हैं, हम खुद भोग करना चाहते हैं। जैसे ही हम ये इच्छा करते हैं तो भगवान की एक अन्य प्रकृति है, हम भी एक प्रकार की प्रकृति हैं। क्योंकि प्रकृति का अर्थ है टू बी एंजॉयड, जैसे पुरुष का अर्थ है एंजॉयर, भोक्ता, उसी प्रकार प्रकृति का मूल अर्थ है टू बी एंजॉयड, भोग्य, भोग्य प्रकृति और भोक्ता पुरुष। तो भोक्ता वास्तव में और पुरुष कौन है? भगवान। और अन्य सब क्या है? भोग्य वस्तु है उनकी, उनकी शक्तियां हैं जो उनके आनंद, उनकी सेवा के लिए है। तो हम भी उनमें से एक हैं, इसलिए हम भी एक प्रकार की प्रकृति हैं। और ये जो संसार, भौतिक संसार हम देख रहे हैं, जड़ पदार्थों का, कितने तत्वों का बना हुआ है कौन जानते हैं? ये भौतिक संसार कितने तत्वों का बना हुआ है? अर्पण नहीं, कितने? और कोई? सबका पांच ही उत्तर है, एट, आठ, कितने? तेईस, चौबीस, पच्चीस, नहीं पच्चीस में आत्मा आ जाएगा, चौबीस। सो महाभूत चौबीस, लेकिन एक्चुअली इट इज 24 एलिमेंट्स। तो जो पांच ये है महाभूत, ग्रॉस एलिमेंट्स फाइव, लेकिन उसके अलावा भी और हैं उससे निर्मित, और तीन सूक्ष्म हैं, पांच और तीन आठ, और उन आठों के अलग अलग मिश्रण से अलग प्रकार के चौबीस तत्व बनते हैं। तो बेसिकली ये जानकारी भी भगवद गीता से है, ये इस्कॉन की बनाई हुई नहीं है। भूमि अपनल वायु खम मनो बुद्धि रे वचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मेरी प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति, सेपरेटेड एनर्जी है, ये आठ तत्वों की बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो ये जड़, ये भी प्रकृति और हम भी प्रकृति हैं। तो वास्तव में हम भगवान के द्वारा भोग्य हैं, हम उनके सर्वेंट हैं, सेवक हैं। लेकिन जब हम इसके विपरीत खुद भगवान का स्थान ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें जो भगवान की बहिरंगा एक्सटर्नल एनर्जी, ये जो आठ एलिमेंट्स की जो बनी है, जिसे माया भी कहते हैं, उस शक्ति के प्रभाव में हम लोग आ जाते हैं, हम मतलब जीव। तो भगवान की सभी शक्तियों को तीन भाग में विभाजित किया गया, तीन कैटेगरी। भगवान शक्तिमान है, शक्तियों के स्वामी हैं, तो शक्तियों के स्वामी है मतलब क्या, उनकी अनेक शक्तियां हैं। परात शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, उनकी अनेक शक्तियां हैं, उनको सबको कैटेगराइज किया गया है तीन भाग में। कोई जानते हैं तीन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? डिवोटीज, हाँ बोली, दुर्लभ, सत्वरजतमो तो गुण है भगवान की, पूरी शक्तियों के तीन विभाग। अंतरंग बहिरंग तटस्थ, भगवान की तीन प्रकार शक्तियों के तीन प्रकार हैं। बहिरंग मीन्स एक्सटर्नल, अंतरंग मीन्स इंटरनल, तटस्थ मीन्स मार्जिनल, बीच की। तो एक भौतिक जगत है जो आध्यात्मिक जगत की परछाई जैसा है, छोटा है, बहुत रिप्लिका है उसका, परवर्टेड परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो आध्यात्मिक जगत जो शक्ति से चलता है वो है भगवान की अंतरंग शक्ति, स्पिरिचुअल पोटेंसी। जिस शक्ति से ये भौतिक जगत चलता है वो कौन सी है? बहिरंग शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, जिसे माया कहते हैं। और एक और तीसरी प्रकार की शक्ति है जो तटस्थ है, जो आध्यात्मिक जगत में भी रह सकते हैं और भौतिक जगत में भी रह सकते हैं, वो कौन से हैं? जीव शक्ति या आत्मा, जिसका हम आत्माओं को मिला करके वो जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी। तो हम कौन से कैटेगरी में हैं? तटस्थ में। इसलिए हम दोनों जगह रह सकते हैं, स्पिरिचुअल में भी और मेटेरियल में भी। अभी कहां पर हैं? अभी कौन सी एनर्जी में है हम लोग? थर्ड। आपका नाम क्या है? थर्ड फ्रॉम दिस, यस, व्हाइट टी शर्ट, रोहित। अभी हम कौन सी शक्ति में हैं? एक्सटर्नल बाहिरंगा माया में कि स्पिरिचुअल में? कौन सी शक्ति के प्रभाव में है ये भौतिक जगत? कौन सी शक्ति चलता है? बहिरंगा, एक्सटर्नल से। थोड़ा टेक्निकल है, दिक्कत हो रहा है समझने में। तो बहिरंगा शक्ति, तो वर्तमान में हम भौतिक जगत में ही है, तो इसलिए हम कौन सी शक्ति के प्रभाव में है? बहिरंगा, एक्सटर्नल। ओके, तो इसे कहते हैं प्रकृति स्थ, हम स्थापित हैं प्रकृति में। भुंगते प्रकृति ज्ञान गुणान, और हम प्रकृति के तीनों गुणों के साथ संग कर रहे हैं। ये जो प्रकृति है, ये जो भौतिक जगत है, इसका संचालन होता है तीन गुणों से। जैसे कठपुतली, देखें आप लोग कठपुतली का नाच, कम से कम टीवी में या कहीं पुरानी पिक्चर में देखा हो तो, खत्म हो गया अभी तो नहीं। तो कठपुतली को ऐसे रस्सी से नचाते हैं, तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में सबको, सब जीवों को नचाया जा रहा है तीन रस्सियों से। गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। बंगाल में कोई है बंगाल? रस्सी मतलब गुण, उसका एक नाम गुण भी है। तो तीन गुण, तीन रस्सियों की तरह से हम बंधे हैं, बंधे हैं, हम बंधे हैं टाइटली, इन ग्रिप बंधे हैं इन तीनों गुणों से, इन तीनों के गुणों के द्वारा बंधे हैं। भुंगते प्रकृति ज्ञान गुणान, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न इस भौतिक जगत का संचालन तीनों गुणों से जो होता है, उनसे हम बंधे हैं। वो तीन गुण कौन कौन से हैं कुलदीप? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण ज्ञान जिससे आता है, रजोगुण अनगिनत भौतिक इच्छाएं जिससे उत्पन्न होती हैं, तमोगुण आलस्य प्रमाद जिससे आता है। जस्ट एक हिंट, आपके जिस क्लास फ्रेंड को सोने में आनंद आता हो, समझ लीजिए कौन से गुण में है? तमोगुण। जो एक जगह पे पांच मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं सकता हो, कौन से गुण में है? रजोगुण। और जो शांत रहता है, ज्ञानवान है, चीजों को समझता है, वो कौन से गुण में है? सत्वगुण। तो आपके क्लास में जाके एनालाइज करो कौन कौन से गुण में है, अपने को एनालाइज करो हम कौन से गुण में हैं। हर चीज इस भौतिक जगत की तीनों गुणों में से रची है। खाना भी तीन प्रकार का होता है, सत्वगुण में खाना, सात्विक खाने की चीजें, राजसिक और तामसिक। तामसिक में कौन कौन सी प्रकार आते हैं खाने के? कौन कौन सी खाद्य पदार्थ तामसिक में है? प्याज, लहसुन और मांस, और मदिरा, शराब, तो जिन लोगों को ये भाव पसंद है यानी वो कौन से गुणों से प्रेरित हैं? तमोगुण। और इसको खाने से और क्या, और कौन सा गुण अधिक बलिष्ठ होगा? तमोगुण। दोनों कैसे चलता है, जिनको तमोगुण है वो ज्यादा इसको पसंद करेंगे और इसको खाने से और अधिक तमोगुण में जाएंगे। फिर बहुत अधिक तीखा, मसालेदार, चटपटा, ये कौन से प्रकार का खाना है? रजोगुण। और सब्जियां, फल, शुगर, माखन, दूध इत्यादि, ये सब कौन से कैटेगरी में है? सत्वगुण। तो सब में ये गुण है। आप देखिए, एक तरफ शेर, बंदर, गाय। शेर कौन से गुण में है? रजोगुण। गाय सत्वगुण। और बंदर या भैंस, भैंस कौन से गुण में है? हमेशा सुस्त, गंदे पानी में। गाय कभी आपने देखा है कि गंदे पानी में, अगर जमीन गीली भी होगी तो एक गाय बैठेगी नहीं वहां पर, गंदगी हो तो बैठेगी नहीं, लेकिन भैंस नो प्रॉब्लम। तो आप लोगों के हॉस्टल के रूम ज्यादातर कौन से गुण में रहते हैं? घोर तमोगुण, करेक्ट, गंदगी गंदगी। लेकिन उसमें भी आप लोग रहते हैं, यानी कि आप कौन से गुण से प्रभावित हो रहे हैं? तमोगुण से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे गुण पनप रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीनों गुण हमेशा हर चीज में, हर चीज में है। ये तीनों गुण, हर चीज तीनों गुणों के द्वारा निर्मित है। और 84 लाख प्रकार की योनियां इन्हीं तीनों गुणों के मिश्रण से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बनी है। 3 × 3 = 9, फिर 9 × 9 = 81, और उस प्रकार से ही जाते 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 ये 84 लाख स्पीसीज हैं, तीनों ही गुणों के अलग अलग मात्रा में मिश्रण से। किसी योनि में तमोगुण अधिक है, किसी में रजोगुण अधिक है, किसी में सत्वगुण अधिक है, ऐसे सब योनियां हैं। ओके, तो हम इन तीनों गुणों में बिल्कुल बंधे हैं। हम बात करते हैं फ्रीडम, हमें आजादी चाहिए, लेकिन हम सब तो हर क्षण बंधे हुए हैं, पूरी तरीके से बंधे हुए हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल्ड हैं, एक एक सेकंड पर। क्योंकि हमें, हम सोचते हैं हमें आजादी चाहिए क्योंकि फ्रीडम नेसेसरी, जरूरी है एंजॉयमेंट के लिए। समझो, हमें, वी शुड बी फ्री, हमें फ्री करो। तो आज हम आजाद देश में हैं, तो देश आजाद है, लेकिन आजाद देश में भी हर व्यक्ति तो बंधा है इन तीनों गुणों से हर क्षण। थोड़ा ज्यादा खा लीजिए डिसेंट्री, थोड़ा कम खाइए शक्ति नहीं है। कितने ज्यादा कंट्रोल है आप? आई एम फ्री, आई विल ईट नाउ एज आई वॉन्ट, देन सफर इमीडिएट पनिशमेंट। तो कहां है फ्रीडम? एनालाइज कीजिए अपने जीवन में, कहां है फ्रीडम? हम सब लोग सोच रहे हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, आपके पिछले कर्मों की वजह से सत्वगुण में है इसलिए बुद्धि चल रही है। डोंट बी प्राउड ऑफ योर, यू आर कंट्रोल्ड। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि थर्ड क्लास आदमी भी नहीं करेगा, करेक्ट। हम सोचते हैं ये तो इतना अच्छा आदमी था, इतना ऐसा काम कैसे किया इसने? क्यों? क्योंकि ये तीनों गुण के प्रभाव में वो है, और ये गुण आपस में लड़ते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं सत्वगुण में तो हमेशा सत्वगुण में रहेगा, कभी कभी उसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव भी होता है, कभी रजोगुण का प्रभाव होता है। तो हम देखते हैं कभी कभी बहुत अच्छा आदमी है, गलत काम कर बैठता है। सो ही इज फोर्स्ड। तो जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं, वो इल्यूजन में है, वो अहंकार में है। भगवदगीता में बताया गया है, प्रकृति क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। बिल्कुल प्रकृति के तीनों गुणों से जकड़े हुए हैं हम लोग, लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं अपने को? अहंकार के मत में सोच रहे हैं। प्रकृति क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा अहंकार से पूरी तरह से ग्रस्त हैं, विमूल हो चुके हैं। करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं, इट्स माई प्रॉपर्टी, इट्स माई इंटेलिजेंस, इट इज माई प्रॉपर्टी, मेरी शक्ति, ये सब गुणों, आपको एक प्रकार का शरीर दिया है इसलिए आपको चल रहे। ऐसे उदाहरण ले, अभी एक आदमी जा रहा है ट्रैक्टर के ऊपर और एक आदमी जा रहा है कॉलेज के ऊपर, दोनों एक्सप्रेस हाईवे पे हैं। अभी जो कॉलेज में बैठ के जा रहा है तो वो जा रहा है कुछ 150 की स्पीड से और वो ट्रैक्टर वाले को देख करके हंस रहा है, देखा मैं कितना बढ़िया ड्राइवर हूं, मैं 150 की स्पीड से जा सकता हूं। तो वास्तव में वो 150 की स्पीड से जा पा रहा है क्यों, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है कि उसके पास कॉलेज गाड़ी है। अगर उसी आदमी को ट्रैक्टर में बैठा दो तो वो 150 की स्पीड से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको ट्रैक्टर मिला है, अभी वो ही ड्राइविंग द ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर के द्वारा लिमिटेड हो गया। तो ऐसे ही हमको एक एक प्रकार का शरीर मिला है, उस शरीर के अनुसार हमारी एबिलिटीज हैं। आज मनुष्य को हर साल ओलंपिक चैंपियनशिप में जो आदमी सबसे तेज भागता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है और वो सोचता है कि पता नहीं मैंने क्या जीत लिया। लेकिन जो चीता है वो तो बचपन से ही वो इतना तेज भागता है, बिल्कुल आसानी से भागता है, उसे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। 80 माइल्स पर आवर नेचुरली। हमको वेट लिफ्टर बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जो टॉप जो हैवी वेट चैंपियन है और इधर एक हाथी का छोटा सा बच्चा भी ले आओ तो भी उसको डिफीट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो हाथी का शरीर है, सिंपल। आप लोग पैराशूट डाइविंग के लिए इतना ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन एक बर्ड के लिए छोटा सा बच्चा होगा निकलते ही उड़ना शुरू कर देगा। सी इजंट इट अ इफेक्ट ऑफ बॉडी। लेकिन हमको गर्व है, आओ हम किए, तुम नहीं किए भाई, तुमको एक प्रकार का शरीर मिला, एक प्रकार की बुद्धि मिली जिसकी वजह से तुम ऐसा कर पा रहे हो। तो ऐसे 84 लाख प्रकार के शरीरों में जैसा जैसा हमारा शरीर है उसके अनुसार हमारी एबिलिटीज हैं, उसके अनुसार हमारे कार्य हैं। तो इसलिए ये अहंकार है ये सोचना कि ये सब मैं कर रहा हूं। जब बुढ़ापा आता है, अभी आप यंग हो, अभी सीढ़ी चढ़ते हो तो एक सीढ़ी के बाद सीधी पांचवी सीढ़ी चढ़ते हो, और जब कोई बुढ़ा आदमी आता है हंसते हो, जब आप बुढ़े हो जाओगे तब देखेंगे क्या होगा, तब चढ़ के दिखाओ 5 सीढ़ियां। लेकिन यंग लाइफ में लगता है कि क्या है सब, माई एनर्जी, इट्स नॉट योर एनर्जी, नाउ यू आर इन यंग बॉडी सो यू आर हैविंग दिस एनर्जी, दैट्स ऑल। बुद्धि, अभी आपको बड़ा गर्व हो सकता है, मेरी बात मैं फास्ट सोच सकता हूं, जब बुढ़े जाओगे तो अपना नाम भी याद नहीं रहेगा फिर सोचो क्या हो गया मेरे को, क्योंकि जो पहले आपकी स्मरण शक्ति थी वो इस प्रकार का आपको शरीर मिला था, उसके अनुसार आपको आप वो एबिलिटी मिली थी। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि जो हमारी सभी एबिलिटीज हैं, जो भी है वो शक्ति है, वो हमारे एक प्रकार का शरीर हमको मिला है पिछले कर्मों के अनुसार, देव नेत्रणा, देवताओं के द्वारा सुपरविजन में मिलता है वो सब, बाई चांस नहीं होता है, अंडर सुपरविजन, नथिंग हैपन्स बाई चांस, दैट्स सिंपली अ बोगस थ्योरी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाई सम। तो जिस प्रकार का हम इस जीवन में कार्य और इच्छाएं करते हैं उसके अनुरूप हमको अगले जीवन अगले क्षर दिया जाता है देवताओं के द्वारा, जो अल्टीमेटली भगवान के द्वारा सुपरवाइज होते हैं परमात्मा के रूप में जो हमारे सबके हृदय में है। तो जो हर साल ओलंपिक चैंपियनशिप में भाग ले रहा है, जिसकी बहुत इच्छा है कि मैं वर्ल्ड में नंबर 1 आना ही है, तो उसकी इच्छा पूरी हो सकती है अगले जन्म में उसको, बाघ क्या जीवन मिल सकता है, ठीक है भागो आराम से भागो, क्यों इतना तकलीफ लेते हो, इतना ज्यादा मुश्किल लेते हो, नेचुरली यू रन। किसी को खूब मांस खाने की इच्छा है, डोंट वरी टू मच, डोंट स्ट्रगल, आदमी हो, दांत नहीं है, नखून नहीं है, उसके लिए जबरदस्ती आर्टिफिशियल कर करके कर रहे हो, वेट फॉर सम टाइम, नेक्स्ट जीवन आपको ऐसा मिलेगा, छुरी की जरूरत नहीं, कांटे की जरूरत नहीं, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको शरीर के अंदर ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी कि आप आराम से उसको खा सकते हो, खूब एंजॉय कर सकते हो। तो ये हर एक योनि के हमारे एंजॉयिंग जो हम चाहते हैं और जैसा हम कर्म करते हैं, दोनों चीज मिश्रित, दोनों चीज साथ साथ चलती हैं, हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म, उसके अनुसार हमको अगला शरीर मिलता है। जैसे अभी इस मनुष्य जीवन में किसी की इच्छा है लीडर बनने की, जहां भी कोई भी चुनाव होता है खड़ा हो जाता है, देखे हमने असल वो लीडर बनने का बड़ा शौक है, कहीं भी क्लास में होगा तो मॉनिटर, हॉस्टल में होगा तो जनरल सेक्रेटरी, फिर आगे यूथ यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, ऐसे हमेशा लीडर, लेकिन अगर उसने कर्म किए हैं, मान लीजिए शराब पीना और उल्टा सीधे सब पाप कर्म किए हैं, तो उसको फिर उसको इच्छा और कर्म के अनुसार क्या होगा, ठीक है लीडर बनना है लेकिन कर्म ऐसा है कि मनुष्य नहीं मिलना है, तो कुत्ते के जीवन में शरीर मिलेगा और कुत्तों का लीडर बन जाएगा, बुलडॉग एक भोगते सब भाग जाते हैं लीडर, बट इन डॉग्स, इन डॉग कम्युनिटी। तो इस प्रकार से सब इच्छाएं और कर्मों का ध्यान में रख करके सब प्रकार की योनियां हैं। जैसे आप रेडीमेड गारमेंट की दुकान में जाते हैं तो अपनी चॉइस और अपनी जेब में कितना पैसा है उसके अनुसार ड्रेस लेते हैं, करेक्ट? चॉइस हो रही है बहुत बढ़िया लेकिन पैसा नहीं तो क्या करोगे, तो दोनों चीज के अनुसार आप एक ड्रेस चुनते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे कर्म और हमारी इच्छा के अनुसार हमको एक एक योनि बदलनी पड़ती है, वो यहां पर बताया गया है। सद असत जन्म योनिषु, और जिस योनि में आप जाएंगे वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा। ए डॉग हैज टू बिहेव लाइक ए डॉग, ही कैन नॉट बिहेव लाइक ए ह्यूमन बींग, कैन ही? डॉग विल ओनली बाव बाव, वो संगीत नहीं गाना शुरू कर सकता, करेक्ट? डॉग विल ओनली बिहेव लाइक ए डॉग, जहां दूसरे कुत्ते को देखा भौंकेगा ही, दैट इज नेचर, ही कैन नॉट बट एक्ट लाइक ए डॉग। तो प्रकृति हम एंजॉय करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्रकार की चीजों को, तो हमें प्रकृति के गुण उस प्रकार से हमें शरीर देते हैं और उस प्रकार के गुण की संगति में हम वो चीज को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं और हमें लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली वास्तव में इस भौतिक जगत को हम एंजॉय कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जगत क्या है, जड़ है और हम हैं चेतन। चेतन चीज जड़ चीज को कभी एंजॉय नहीं कर सकती है, एक इनकंपैटिबिलिटी है, एक जीवित चीज है और एक मृत चीज है। लेकिन हम चाहते हैं ऐसा करना, इसलिए तीनों गुणों के अंदर कंट्रोल करके हमको ऐसी व्यवस्था की जाती है कि हमको ऐसा फील होता है कि वी आर एंजॉइंग। जैसे किसी किसी आदमी को शौक होता है, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं बचनी चाहिए जो मैं नहीं खाया हूं, जिससे मैं गर्व से कह सकूं मैं सब कुछ खा सकता हूं। तो ऐसे चीज खाते हैं बिल्कुल घृणित, जो मनुष्य के द्वारा खाने योग्य नहीं है। तो अभी प्रकृति के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उनको ऐसे गुण में दिया जाता है, उनको ऐसी जीवा दी जाती है, ऐसी आंखें दी जाती हैं, ये सब श्लोक भगवद्गीता से बता रहे हैं हम, कि मन और उसके चारों तरफ इंद्रियां इस प्रकार से एडजस्ट होती हैं, वो इंद्रियां होती हैं कि उसको वो पर्टिकुलर टाइप का जो सेंस ऑब्जेक्ट है उसके स्पर्श में जब वो इंद्रिय आती है तो उससे उसको आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एक ग्रॉस उदाहरण है, डोंट टेक इट बट व्हाट कैन आई डू, इट्स वेरी रिलेवेंट। आप देखते हैं सुअर, तो सुअर का फेवरेट डिश क्या है, मल। अभी हम लोग को तो मल के नाम से भी घृणा आती, करेक्ट? लेकिन सुअर के लिए वो सब बेस्ट, इट्स फेवरेबल डिश, गरम गरम मॉर्निंग, सो ही इज ऑलवेज देयर इन द गटर एंजॉइंग दैट, ही इज एबल टू एंजॉय दैट, वो उसमें बड़ा आनंद देता है उसमें। कैसे? क्योंकि उसको उस प्रकार की जीवा दी गई है, उस प्रकार का मन दिया गया है कि जब उसकी जीवा वो मल के संपर्क में आती है तो उसका आनंद आता है। एक्चुअली जो हम खाते हैं, अगर बायोकेमिकली आप देखें तो वो और मल में कोई अंतर नहीं है, करेक्ट? प्रोटीन फैट इफ यू एनालाइज, वो खा के मल ही बन जाता है और वो किसी का खाना होता है, फिर वो उसका मल बनता है और वो किसी और का खाना होता है, तो इट्स ए चेन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रकार की इंद्रिय को एक पर्टिकुलर प्रकार के कॉम्बिनेशन उसमें वो उसको आनंद दिखता है, हैप्पीनेस दिखती है। तो हमको हलवा अच्छा लगता है तो मल, तो सुअर को मल अच्छा लगता है, हम हलवा खा के मल बनाते हैं और वो मल को खाता है, दैट्स ऑल, और कुछ और बनाता है जो किसी और को हलवा लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए कि ये जो एंजॉयमेंट हम कह रहे हैं, एंजॉयमेंट कहां है ये एंजॉयमेंट, दिस इज इन द माइंड, मनो, मन की कल्पना है ये एंजॉयमेंट। अदरवाइज देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन रसगुल्ला, या जो रसगुल्ले को खाने के बाद जो बनता है, आप देखिए रसगुल्ला या कोई अच्छा खाने की डिश आपके सामने आई है, लेकिन आपको तुरंत समाचार मिलता है कि आपका कोई नियर एंड डियर एक्सपायर हो गया है, भगवान ना करे, भगवान ना करे कि ऐसा तो हो गई एनीवे। सो वो जो आप जो खाने जा रहे थे, आपके जीभ में से पानी टपक रहा था, अभी आप खा पाएंगे उसे? अभी आपको खाएंगे तो भी जबरदस्ती भी खिलाया जाए तो आपको टेस्टी लगेगा वो? तो अगर वो चीज के अंदर टेस्ट था, रसगुल्ले के अंदर टेस्ट था, आपकी जीभ भी वही है, रसगुल्ला भी वही है, लेकिन अभी आपको वो टेस्टी नहीं लगेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज द टेस्ट, वेयर इज द एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट इज इन द माइंड। माया के द्वारा हमको ऐसा प्रतीत कराया जाता है कि दिस इज एंजॉयबल। ये गुणों का काम है, तीनों गुण इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इस जगत में घूम रहे हैं 84 लाख योनियों में, अलग अलग इच्छाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार की इंद्रियां प्राप्त करते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर दूसरा एंजॉयमेंट मांगते हैं, उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर तीसरा एंजॉयमेंट मांगते हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही रहेंगे, करते रहेंगे। कब तक? जब तक इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा है, जब तक भगवान बनने की इच्छा है, तब तक कोई ना कोई योनि हमें दी जाएगी भगवान बनने के लिए, ट्राई करने के लिए। आई वॉन्ट टू बी गॉड लाइक ए डॉग, ओके। आई वॉन्ट टू बी गॉड लाइक ए हॉग, ओके। सब लोग डॉग गॉड ही बनना चाह रहे हैं, बट गॉड की जगह डॉग, लेकिन बनना चाह रहे हैं सब भगवान। कोई देवता की तरह, कोई बिल गेट्स की तरह, कोई इंजीनियर की तरह, कोई डॉक्टर की तरह, पर भावना सबकी वही है, सेम मेंटेलिटी, आई वॉन्ट टू एंजॉय। तो जब तक ये एंजॉइंग मेंटेलिटी है, तब तक हमें कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ेगा ही। आप विवश होंगे धारण करने के लिए, विवश होंगे आप। तो यहां पर यही चीज बताई है कि पुरुषः प्रकृतिस्तु हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद जन्म योनिषु। ऊपर और नीचे योनि, सद अच्छी योनि, बुरी योनि, इन तीनों गुणों के संगति से हमको मिलती है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्य तिष्ठन्ति राजसः, अधो गच्छन्ति तामसः। जो इस जीवन में सत्वगुण को कल्टीवेट करता है, वो इस मनुष्य योनि से आगे की तरफ चलता है और अच्छी योनि में चलता है। जो रजोगुण को में रहता है, वो दोबारा से इसी प्लेटफॉर्म में मनुष्य योनि में ही रहता है। और जो तमोगुण को कल्टीवेट करता है, अभ्यास करता है तमोगुण का, वो निम्न योनियों में जाता है। ये विज्ञान है, साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, जिसका वैज्ञानिकों को कोई पता नहीं, लेकिन इट्स नहीं है कॉमन थिंग। सो मेनी स्पीसीज, वाई, क्यों है अलग अलग जीव, अलग अलग वो भी जीव है, ये तो जानना कोई मुश्किल नहीं है। उनमें भी आत्मा है, वो भी हमारे जैसे ही हैं, वो भी खाते हैं, वो भी जनन करते हैं, वो भी सोते हैं, सब कुछ, जब शरीर अलग है। तो ये अलग अलग शरीर क्यों है, ये प्रश्न उठना चाहिए। सभी का एक जैसे ही क्यों नहीं है? इसका मतलब जन्म से पहले ही कुछ चीजें हैं जो निश्चित कर रही हैं कि किसका कौन सा शरीर होगा। तो वो सिद्धांत ये है कि हमारे गुणों के अनुसार अलग अलग हमको शरीर मिलेगा। हाँ, तो अभी महत्वपूर्ण बात ये है, इसीलिए जो शरीर जैसा हमको मिला है हमारे पिछले कर्मों के अनुसार, उसी के अनुरूप हमको सुख और दुख मिलेगा ही, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बहुत बहुत अधिक मात्रा तक विवश हैं, बहुत बहुत अधिक मात्रा तक विवश हैं। किसी का जन्म हुआ है एक अनाथ, वो की तरह से ऑर्फेनेज में, बुद्धि नहीं है, तो उसका जीवन, उसका भविष्य, हम बोलते हैं इक्वालिटी, आजकल बड़ा ही हॉट इश्यू है, सबको इक्वल बनाओ, सबको इक्वल होना चाहिए। पर सब इक्वल हैं? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, एनीबॉडीज ऑब्जर्वेशन, संसार में सब इक्वल हैं क्या? सबकी बराबर बुद्धि, सबकी बराबर फिजिकल स्ट्रेंथ, सबके बराबर सुंदरता, सबकी बराबर एबिलिटी, इंटेलिजेंस है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। देन हाउ कैन यू आर्टिफिशियली मेक एवरीबॉडी इक्वल? विमेन, आजकल विमेन राइट्स, स्त्रियां पुरुष में भेद नहीं होने, सब एक होने चाहिए। तो आदमी बच्चा पैदा करके दिखाए, हाउ कैन यू मेक इट इक्वल? हाउ कैन यू मेक इट सेम? बाय नेचर इट इज डिफरेंट, हाउ कैन यू मेक इट सेम? नहीं है, अलग अलग है। और अलग अलग का कारण यह है। तो इसीलिए इस मनुष्य जीवन में जो आपकी स्थिति है, भौतिक स्थिति, उसको सुधारने का प्रयास मत कीजिए। इट्स अ ब्लो ऑन यू ऑल, आपके ऊपर एक ये प्रहार है आपकी चेतना के ऊपर, जो मैं ये वचन कहा हूं कह रहा हूं। इस मनुष्य जीवन में अपनी वर्तमान भौतिक स्थिति को सुधारने का प्रयास व्यर्थ है। इस स्टेटमेंट के ऊपर आप सभी को अगर रिवॉल्यूशन, हम नहीं मानते आपका तो, क्योंकि हम सबका पूरा जीवन तो इसी चीज पर निर्भर है, वी वॉन्ट टू इंप्रूव अवर मेटेरियल सिचुएशन, दैट्स ऑल व्हाई यू आर ऑल कम हेयर टू विद्यानगर टू स्टडी। अपने जीवन को सुधारने के लिए यहां पर आए ना आप लोग, लेकिन मैं यहां पर भगवत गीता के आधार पर यह वचन कह रहा हूं, यू कैन नॉट इंप्रूव योर सिचुएशन मोर देन व्हाट यू आर डेस्टिन्ड। जो तीनों गुणों के द्वारा जिस प्रकार का आपका शरीर निर्मित है, उससे आप अधिक या कम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जितना चाहे उतना प्रयास करके देख लीजिए। जब मैं पढ़ता था, मेरे 2 साल सीनियर एक लड़का था, तो वो +2 में CBSE बोर्ड टॉप, IIT सिलेक्शन, एम्स सिलेक्शन, सो एवरीवन वाज लाइक सच एन इंटेलिजेंट बॉय। तो लेकिन हम सबको क्या बोला जाता था कि तुम उससे कम नहीं हो, तुम सब लोग भी वैसे बन सकते हो, और हम ये सोच के बड़े सुखी आते थे, हम भी वैसे बन सकते हैं, हम कुछ कम नहीं है। तो मैंने बहुत ट्राई किया वैसा बनने का, मैं कभी नहीं बन पाया। तो आपके भी स्टूडेंट, आई वेंट ऑन BVM, दिस जो आपके ग्रेड्स मिलते हैं ना फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सब कुछ CPI, तो कुछ प्रोग्राम रखते हैं, तो मुझको बुलाया था एक बार, तो वहाँ आपके अध्यापकगण आप सबको बड़े प्रोत्साहन दे रहे थे कि ये इसका तो सबसे टॉप CPI है, लेकिन आप घबराओ मत, आप भी खूब मेहनत करो अगली बार और आप भी वैसे आ जाओ। ठीक है, मेहनत करने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, हम ये नहीं कहते कि इस जीवन में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, यस देयर इज समथिंग, लेकिन सब लोग तो इंजीनियर बन ही नहीं पाए ऑन द फर्स्ट हैंड, सब लोग का सिलेक्शन तो हो ही नहीं पाया इंजीनियरिंग में, करेक्ट, सब लोग डॉक्टर बन ही नहीं पाए, सिलेक्शन ही नहीं हो पाए, तो वहां बराबर की बात आई कहां, और उसके बाद भी आप देखिए देयर ऑल बी सम डिफरेंस, तभी तो फर्स्ट एक ही होता है, टॉप इज वन, नॉट एवरी वन ऑन टॉप, देन हाउ इज इट टॉप, अगर सभी लोग टॉप पे पहुंच गए तो टॉप रही क्या गया। सो ये वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट एवरीथिंग इज नॉट सेम, इक्वलिटी नहीं है, डिफरेंसेज आर देयर। तो ये डिफरेंसेस हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हैं और वो उस प्रकार से रहेंगे, इसीलिए उसके लिए क्यों व्यतीत होना, उसके लिए क्यों व्यतीत होना, क्योंकि यदि मान लीजिए आपकी वर्तमान स्थिति मान लीजिए सुधर भी गई, आपके बहुत 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 प्रयास किया आपके आपने कि आपका डी ग्रेड आता था, तो बहुत बहुत प्रयास करने से मान लो सी ग्रेड आ गया, ऐसे ही होता है आपके डी सी ऊपर होता है कि सी के डी नीचे ऊपर होता है, ऊपर, ओके, तो डी ग्रेड मेहनत करने पर बहुत सी ग्रेड आ गया, लेकिन चाहे डी ग्रेड हो चाहे सी ग्रेड हो, जब मरेंगे तो सबका एक ही ग्रेड हो जाएगा, सेम ग्रेड हो जाएगा बॉडी का, क्योंकि ये सब ग्रेड बॉडी संबंधित, वहां सबका एक उस समय एक हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट जीवन जिसको जैसा जैसा काम किया वैसा वैसा मिलेगा, आप जानते भी नहीं होंगे क्या मिलेगा और आपका उसके ऊपर कोई अधिकार भी नहीं हो क्या मिलेगा। तो यदि कोई आप लखपति बन के मर रहे हैं कि गरीबपति बन के मर रहे हैं, इंजीनियर होके मर रहे हैं कि डॉक्टर होके मर रहे हैं कि कुछ भी होके मर रहे हैं, मॉर्चरी में कौन कौन लोग गए आज तक, गए कोई मॉर्चरी पोस्टमार्टम, कोई नहीं गए होंगे, लेकिन मेरे को बहुत मौका मिला जाने का मेडिसिन पढ़ने की वजह से, तो ड्रेडफुल एक्सपीरियंस है। तो मॉर्चरी में आप जाइए तो वहां पर बस ये नंगा शरीर, यही रियलिटी है, यही सब स्पष्ट हो जाता है, वहां चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, जो पोस्टमार्टम के लिए वो सेम टेबल, वही सेम 50 पैसा ब्लेड, सेम कटिंग और सेम वही शरीर के अंदर सब बाहर इक्वल, दैट्स ऑल, फिनिश्ड, क्या क्या डिफरेंस रह गया। तो समझिए कि आप अपनी स्थिति को इस भौतिक जगत में मान लिया, सुधार भी लें, जो एक्चुअली बहुत कुछ सुधार नहीं सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो स्थिति वैसी नहीं रहेगी, यू विल हैव टू चेंज योर पोजीशन व्हाट एवर यू आर इन। आप जो भी स्थिति में आज हैं आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या, किसी को है कि मैं उसको पकड़ के रखूंगा, पैसे को कोली भर के रखूंगा, पैसा निकल नहीं जाए, अरे आप ही छूट जाएंगे शरीर से तो पैसा क्या करेगा आपके साथ, और उससे पहले तो बहुत पैसा निकल जाएगा, वो दूसरी बात है, करोड़पति रोडपति बन जाते हैं। सो इजंट इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस भौतिक जगत का नियम है, कि आप अपनी पोजीशन में मेंटेन रह ही नहीं सकते, यू विल हैव टू चेंज द पोजीशन। इसलिए कभी आप ब्रह्मा बनेंगे, लेकिन ब्रह्मा बनने के बाद फिर से अगर ये भौतिक इच्छाएं रही तो उन इच्छाओं की वजह से, भौतिक इच्छाओं की वजह से हमेशा इच्छाओं, जब तक ये भोग करने की वृत्ति है तब तक ये रजोगुण और तमोगुण सतोगुण की कॉम्पिटिशन चलती रहेगी। तो कभी सतोगुण आ गया है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, इसलिए आप विवश होंगे कभी ब्रह्मा बनने के लिए, कभी चीटी बनने के लिए, कभी सुअर बनने के लिए, कभी आदमी बनने के लिए विवश होंगे। तो फिर क्यों प्रयास करें ब्रह्मा बनने का, बिल गेट्स बनने का? ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो बहुत रिवॉल्यूशनरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटेलिजेंट हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में कहा गया है तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो न यत् लभ्यते ब्रह्मतम उपर्यधा, न लभ्यते यत् ब्रह्मतम उपर्यधा, यत् लब्ध्वा अंतवत् दुःखवत् अन्यत् सुखम्। कि इस संसार में जब आप मनुष्य के रूप में आए हैं तो ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो केवल जो इस पूरे जगत में भ्रमण करने से ऊपर से नीचे तक, ब्रह्म योनि से निम्नतम योनि तक कहीं भी प्राप्त नहीं है। ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो मनुष्य योनि मिलने पर। तो वो कौन सी चीज है जो तीनों भुवन में, इस पूरे भौतिक जगत में किसी को भी उपलब्ध नहीं है? या पहले देखें तो सबको क्या उपलब्ध है? सब लोग विवश हैं, चार चीजों के लिए विवश हैं सब कोई, चाहे ब्रह्मा की योनि हो, चाहे चीटी की योनि हो, चाहे मनुष्य की योनि हो। कौन सी चार चीजें हैं जिसके लिए विवश हैं? आहार निद्रा भय मैथुन की आवश्यकताएं हैं, लेकिन उनको विवश होना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई है बचा हुआ इनसे चारों से? चाहे ब्रह्मा बन जाओगे, चाहे बिल गेट्स बन जाओगे, चाहे कुछ भी बन जाओगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आएगा ही आएगा, भुगतना ही पड़ेगा। तो फिर कहा गया है ऐसी चीज के लिए प्रयास करो जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यानी क्या उपलब्ध नहीं है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, नित्यता, नित्य जीवन, जो हम सबकी चाह आवश्यकता है, जो हम सब लोग चाहते हैं अपने हृदय के अंदर, सब चाहते हैं नित्य जीवन, अमर होना, हमेशा से आनंदित रहना। तो वो किसी को भी उपलब्ध नहीं है इस पूरे जगत में। तो ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, ना कि भौतिक सुख के पीछे भागो। अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के पीछे प्रयास करना मनुष्य के लिए नहीं है, वो जानवरों के लिए। क्योंकि कहा गया है जैसे दुखवत अन्यतर सुखम, जैसे दुख अपने आप मिलता है बिना प्रयास किए, बिना इच्छा किए, जितना आपके भाग्य में है उसी प्रकार जितना आपके भाग्य में भौतिक सुख है उतना आपको मिलेगा ही। आप में से कितने लोग दुख प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किए मंदिर में जाकर के आज तक? कितने लोग अभ्यास किए, कुछ पढ़े बुक्स, हाउ टू बी अनहैप्पी, कोई पढ़े? लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन दुख अनुभव कर रहे हैं, कभी बीमारी, कभी टेंशन, कभी दिस दैट, एवरी सेकेंड? सब लोग। तो आप तो चाहते नहीं, आप तो इच्छा नहीं करते, आप तो प्रयास नहीं करते, फिर भी दुख क्यों आता है? यदि आप यह सोच रहे हैं कि आपके प्रयास करने से ही सुख आएगा, तो फिर जब तक आप प्रयास नहीं करें तब तक दुख नहीं आना चाहिए। आर यू फॉलोइंग दिस लॉजिक? यदि आप यह सोचते हैं कि सुख मेरे प्रयास से ही आता है तो फिर दुख भी आपके प्रयास से ही आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिना प्रयास के दुख आता है। तो इसीलिए बिना प्रयास के सुख भी आएगा जितना आपके भाग्य में है। इसलिए उसके लिए क्यों प्रयास करने का? उसके लिए क्यों प्रयास करने का मीन खाना है, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये बेसिक नेसेसिटीज है। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि अब आप खाना बंद कर दो, सोना बंद कर दो। सेंस इज मिनिमम, मिनिमाइज इट, इसको कम करो। ये शरीर की जो आवश्यकता है इसको कम करो, जस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल। और एनर्जी और टाइम को सेव करो किस लिए? अमरत्व प्राप्त करने के लिए, नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए, परमानंद प्राप्त करने के लिए, जो पॉसिबल है मनुष्य जीवन में केवल। ये सेंस है कहने का। तो इन तीनों गुणों के बंधन में क्यों रहें? इन तीनों गुणों से ऊपर निकलिए, वास्तव में फ्रीडम वो है। आप फ्री होना चाहते हैं, मैं पेरेंट्स से फ्री हो गया, अभी मैं कॉलेज में हूं, मैं फ्री लाइफ। लेकिन वास्तव में फ्रीडम क्या है? वास्तव में जीव की एकमात्र फ्रीडम है माया से मुक्ति। तीनों गुणों से मुक्ति ही जीव की एकमात्र स्वतंत्रता है। इस वचन को जाकर के आप अपनी नोटबुक में लिख के रखिए एंड मेडिटेट इट अगेन एंड अगेन। द ओनली एंड द हाइएस्ट पॉसिबल फ्रीडम फॉर एनी लिविंग एंटिटी इज फ्रीडम फ्रॉम द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। दिस इज द ओनली पॉसिबल फ्रीडम। तीनों गुणों से मुक्ति ही वास्तव में फ्रीडम है, और इससे ऊपर फ्रीडम और कोई नहीं है। तो ये फ्रीडम हमें कैसे मिलती है? By surrendering to God। आप बोलेंगे ये क्या, एक तरफ फ्रीडम बोलते हो और एक तरफ सरेंडरिंग। सरेंडरिंग मीन्स शरण लेना। शरण लेना मतलब किसी के नियंत्रण में आना। तो ये क्या, फ्रीडम और द शरण दोनों अपोजिट हैं। इसलिए हमने कहा हाइएस्ट पॉसिबल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम थ्री मोड्स, नॉट फ्रीडम फ्रॉम गॉड। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो फ्रीडम नहीं है भगवान से फ्री हो जाना, मैं भगवान को भी अपने कब्जे में ले लूंगा। ये ऐसा जो सोचता है इसका मतलब वो है ही माया के अंदर, इज ऑलरेडी इम्प्रिजन, वो माया के अंदर ही है। इसका मतलब कहने का यही है, जो सोचता है कि मैं भगवान से फ्री हो जाऊंगा या हूं, इसका मतलब ही है कि वो माया के द्वारा बंधा हुआ है। तभी तो ऐसा पागलपन उसके अंदर है सवार। तो हमारी वास्तविक फ्रीडम है कि हमें समझना कि हम भगवान के दास हैं, क्योंकि वास्तविक फ्रीडम है तीनों गुणों से मुक्त होना, वही हमारी फ्रीडम है। और वो हमें मिलती है भगवान की सेवा करके, वही हमारी रियल फ्रीडम है। भगवान की सेवा करने में ही हम सच्चित आनंद में रहते हैं, परम आनंद में रहते हैं। इसलिए हमें इन तीनों गुणों से निकलना है तो हमें क्या करना होगा, भगवान को समझकर, अपनी स्थिति को समझकर, अपने उनके साथ संबंध को समझकर उनकी शरण लेनी होगी। तो यहां इस श्लोक में बताया गया है ये फ्रीडम का जो प्रोसेस है, रियल प्रोसेस ऑफ फ्रीडम, यानी माया से, तीनों गुणों से निकलने का जो प्रोसेस है, इसकी शुरुआत होती है श्रवणम, सुनने से। क्या सुनने से? रॉक एंड रोल म्यूजिक सुनने से नहीं, आपका सिलेबस की बुक सुनने से नहीं, ईश्वर भगवान के विषय में भगवान के भक्तों से सुनने से फ्रीडम का प्रोसेस शुरू होता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, ये जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, हम हैं भगवान के अंश, लेकिन वर्तमान में जो माया के द्वारा कवर्ड हैं, ये जो फ्रीडम, ये जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये शुरू होता है बाय हियरिंग। जो आप लोग कर रहे हैं अभी, जो हम सब लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या है, प्रोसेस शुरू हो रहा है। भगवद गीता को नियमित रूप से सुनना, ये शुरुआत है फ्रीडम के प्रोसेस के, तीनों गुणों से निकलने की। तो इसलिए ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। तो आप लोग इसीलिए रेगुलरली यहां आइए, सुनिए। और मैंने लास्ट टाइम बोला था कि सबके पास ये भगवद गीता होनी चाहिए जरूर, जिससे आप केवल सप्ताह में एक घंटा नहीं, बल्कि हर दिन या जब भी आपको समय मिले, अपने रूम पर इस पुस्तक को आजीवन पढ़ें, आजीवन हर दिन पढ़ें। और पढ़ पढ़ के धीरे धीरे आप सुबह अनुभव करेंगे कि आप अभी इन गुणों से मुक्त हो रहे हैं। पहले जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो सिगरेट दास बन गए हैं, शुरू शुरू में वो सिगरेट स्मोकिंग शुरू करते हैं एंजॉय सोसाइटी में दिखाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सिगरेट दास बन जाते हैं, गर्लफ्रेंड दास। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जहां तक गर्लफ्रेंड दास, जो गर्लफ्रेंड कहती है वैसे करना पड़ता है, बैठो तो बैठो, खड़े हो तो खड़े हो, जो लेके आओ वो लेके आओ। तो ये सब क्या है, अंत में इंद्रिय दास, अपनी सब हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं, गोदास। तो अगर गोस्वामी बनना है, इंद्रियों के स्वामी बनना है, तो भगवान के दास बनना पड़ेगा, तब आप गोस्वामी बन सकते हैं, तब आप वास्तव में फ्री हो सकते हैं, स्वस्थ जीवन हेल्दी लाइफ में आ सकते हैं। तो यही हमारे आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप सब लोग भगवान के इन वचनों को गहराई से पढ़िए, समझिए, अपने जीवन को मात्र इन तीनों गुणों में रह करके बर्बाद मत कीजिए। आपके पास वो थोड़ी सी फ्रीडम है इन तीनों गुणों से निकलने के प्रोसेस को शुरू करने की, उस फ्रीडम का सदुपयोग कीजिए। उसका सदुपयोग क्या है, भगवान की शरण ग्रहण कीजिए, जिसका प्रारंभ होता है भगवान से, भगवद गीता से, विनम्रता से, सुनने से। हरे कृष्ण। इस विषय में कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है किसी का? ओके, तो अभी हम लोग, यस रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों गुणों से बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, भक्ति। माम चयो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं जो अव्यविचारिणी अनन्य रूप से मेरी भक्ति सेवा करता है वो इन तीनों गुणों से ऊपर निकल जाता है। तो तीनों गुणों से ऊपर निकलने का रास्ता एक ही है, भगवान की शरण में जाना। हरे कृष्ण। तो अभी आप हम लोग कीर्तन करेंगे, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े।